ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। संकर्षण कारण तोय साई गर्भोदसाई च पयोदिसाई शेषस्य जस्यांश कलास नित्यानंदाख्य राम शरण ममास्तु। आज श्री श्री बलदेव जी का की आविर्भाव तिथि है। गर्ग संहिता के अनुसार में अभी इसके बाद में जो महीना आएगा उसमें बलदेव छठ के दिन में बलदेव जी का आविर्भाव मना गया है।
राधाष्टमी के दो दिन पहले
छठ में, और ब्रज में वही सब जगह माना जाता है। किंतु इसमें कुछ अड़चन है। यदि बलदेव जी को कृष्ण से उस समय में मानते हैं तो कृष्ण से कितने दिन, एक वर्ष के करीब में बड़े होते हैं। किंतु कृष्ण ने और बलदेव जी ने साथ ही साथ उनका नामकरण हुआ, साथ ही साथ में रिंगण लीला किया, घुटरुओं पर चले, साथ ही साथ सब उनका काम हुआ। इसलिए जीव गोस्वामी ने कहा जे नहीं, बलदेव जी का जन्म कृष्ण से केवल कितना
8 दिन
केवल पहले हुआ है, इससे सबका सामंजस्य हो जाएगा, तब दोनों का एक ही साथ में खेलना धुलना और सभी काम ये ठीक से हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पूर्णिमा के दिन में बलदेव जी का जन्म तिथि माना है। इसके संबंध में बलदेव जी के तत्व के संबंध में अभी श्रीमान रसानंद ब्रह्मचारी जी इनके तत्व पर कुछ विश्लेषण करेंगे।
मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव
शिक्षा गुरु परंपरा का आचार्य त्रिदंड स्वामी समर्थ वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ। उपस्थित त्रिदंड पाद पर वैष्णव वैष्णव सभी के चरण मेरा यथाशक्ति प्रणाम। हम लोग आज तक हमारी संप्रदाय का जो मूल आचार्य जिनका नाम लेकर के हम अपना को बड़ी गर्वान्वित और अपना को बड़े सौभाग्य मानते हैं, जिस रूप गोस्वामी जिस रूपानु का संप्रदाय में हम लोग आए हुए उनके विषय में हम लोग 3 दिन तक विभिन्न वक्ताओं को मुखारविंद से उनका अवदान वैशिष्ट को लेकर के बहुत सारी कथा हम लोग ने श्रवण किया है। इतना सुनने पर भी समझो उनको विषय कुछ भी बोला नहीं हुआ, क्योंकि उनका एक ही जो ग्रंथ है जो भक्ति रसामृत उज्जल निर्मणी उनका अंतर दूत प्रज्ञावली ललित माधव ग्रंथ से कितने बोले, कहीं सी थोड़ी सी कहीं केवल एक दिग्दर्शन मात्र टूट गया है। नहीं तो पूरा महाप्रभु जैसे रूप गोस्वामी को बोलते थे भक्ति रस एक समुद्र है, उसका केवल एक बूंद ही तुमको चस्का तुमको चखाने जा रहा। समझो अब तक हम कितने कथा सुने अलग अलग वक्ताओं को बुधार की तरह से हम लोग अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग बात हम लोग सुने, लेकिन तब भी कुछ नहीं। मानव जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कोई रसगुल्ला खाए, रसगुल्ला खाते समय अगर दोनों तरफ से उसका अगर एक आध खून उसके रसगुल्ला का अगर रस कहीं टपक गिर पड़े, लेकिन वो जो रस है चेटी के लिए चेटा चेटी के लिए बहुत है,
हाथ रक्त बंद हो जाते हैं, हमारी दाग हो जाते हैं, ठीक है लाख दर्शन खराब हो गए,
उसका जो एक आध खून निकल गया तो मुखार की तरह से ये भी हमारा लिए बहुत बहुत है। इसलिए लेकिन मुझे लगता है किसी संपर्क हमारे किसी गौड़ वैष्णव में इसलिए रूप गोस्वामी के विषय में हम लोग जितने श्रवण किया है ये कथा कहीं नहीं होती। देखो बहुत जगह गौड़ बैठ के गया है सब जगह में, लेकिन ये ऊपर श्री रूप गोस्वामी के ऊपर में जितने हम लोगों ने सुना है आप लोगों ने कहीं सुने हो इधर उधर सारा दुनिया में सुन रहे होंगे, इनके ऊपर में कहीं विवेचना कहीं इनके विषय में कुछ भी सुनने को नहीं मिलता, थोड़ी बहुत रूप गोस्वामी के बात में सुनने को मिलता है। लेकिन हम लोग जिस रस को महाप्रभु जगत में ब्रह्म का एक दिन में एक बार देने के लिए आए हैं, वो है रस जो अनर पित चरित्र जो रस है। हाँ, इसलिए जिस चीज को देने के लिए आए उसी विषय में संपूर्ण रूप में मुझे लगता है यही पर ही 3 दिन तक हम लोग ने विशेष पूर्वक श्रवण किया। इसलिए स्थापित जैन भूतले स्वयं नारायण तदा मध्यम ददाति सुपदातिकम, ये कोई अतिथि नहीं है। इसलिए वहां मुझे लगता है कहीं भी इसी आचार्य मैं तो जितने जगह गया हूँ इसी विषय पर थोड़ी बहुत कहीं विवेचना होते हुए सुनने को मिलता, इतने सुखमादि सुख रूप में उनका अवदान वैशिष्ट के विषय में कहीं सुनने को नहीं मिलता। समझो हम लोग अहोभाग्य हम लोग का अहोभाग्य है जो हम लोग किसी तरह से श्री महाराज का सान्निध्य में हम लोग आए। समझो हमारे बहुत बहुत जन्म जन्मांतर का ये संस्कार है, सौभाग्य है। देखो जब तक किसी वस्तु का महत्व हम नहीं समझेंगे तब तक वो चीज पाने के लिए हम कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन साधारण लोग गौड़ीय मठ में कहते हैं अरे हम अनधिकार है हम थोड़ी उसको सुन सकते हैं थोड़ी और विवेचना कर सकते हैं, हम अनधिकार बोलकर उसको टरका देते हैं। लेकिन जितने सारे ग्रंथ हम लोग पढ़ेंगे सब विषय में यही विषय में बोलते हैं राधा कृष्ण के चरण में रहती हो, हाँ लेकिन ये चीज को टक्का देते हैं। लेकिन जब तक हम नहीं सुनेंगे तो वो वस्तु का प्रति लोभ कैसे होगा, जिस वस्तु का प्रति लोभ नहीं होगा हम पाने के लिए क्यों कोशिश करेंगे, अगर सुनेंगे तभी तो इच्छा करेगा नहीं वो वस्तु हम कैसे पाए, नहीं सुनेंगे तो हमारा मन में अवनक ना आए। इसलिए समझो हम लोग बहुमन के हम लोग का श्रील महाराज की सान्निध्य में हम लोग आए, समझो हमारे हो भाग्य है उसी कड़ी में आज की बल দেহ মাত্র থেকে, কিন্তু কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্বেশ্বর হে আর উনকা হি অভিন্ন মাত্র, কিন্তু কেবল শরীর সে ভেদে কৃষ্ণ দেখনে মে কালে আর শ্রী বলদেব প্রভু দেখনে মে গোরে, একই স্বরূপ মাত্র দেহ মাত্র থেকে। ফির কিতনা দেহ মাত্র থেকে জিসকে লিয়ে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বতায়ে আজ আপ লম্বি সব পুজো কা কথা বতা দো, সংকীর্তনে কবিতরও কমলায় সাক্ষো বিশ্বম্ভর বিজবর যুগ ধর্ম পাল বন্দি জগত করুণা বতা। উনকো এক স্বরূপ তো শ্রী বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বতা দেন মেরে গুরুদেব আর শ্রী বলদেব শ্রী কৃষ্ণ মে মহাপ্রভু মে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু মে কোই ভেদ নেই। एक श्लोक में यहाँ पर द्विवचन द्विवचन प्रयोग किया, आजान लंबी में पूजो, देखने में महाप्रभु जैसे नित्यानंद प्रभु भी जैसे है। आजान लंबी तो पूजो कहने का बता दो, कलयुग में हो तो दोनों ही गौरव रूप में आएंगे, दोनों ही हरिनाम संकीर्तन को प्रचार किया, दोनों ही जुगल धर्म को स्थापित है, इसलिए इतना अभेद दिखाए एक श्लोक में दोनों का ही द्विवचन प्रयोग करते हुए उनको अभिन्नत्व को स्थापित करते। इसलिए श्री बलदेव प्रभु केवल रास करते हुए केवल कृष्ण को ही देखने को मिलते हैं और कोई रास नहीं, लेकिन और कौन किया है, कहते कि मात्र श्री बलदेव प्रभु ही राम घाट में रास किए और किसी अवतार में उनको रास करते हुए किसी अवतार में दिखाई पड़ता, केवल कृष्ण श्री बलदेव प्रभु दोनों ही रास किए। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके लिए बताए शंकर शरण में कारण तो ऐसा ही कृष्ण जैसे वृंदावन छोड़कर के पाद एकम न गच्छति, जैसे वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते, उसी तरह श्री बलराम बलराम वो भी श्री वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं जाते। कृष्ण जैसे ब्रज में रहते हुए उनका जो अस्त्र क्या है, बंसुरी बंसुरी बजाते हैं, उसी तरह जब वे बलदेव प्रभु बलराम जब रहते हैं वो वृंदावन में, उसी समय वे श्रृंगार वेणु बंसुरी कभी कभी धारण करते हैं, इसलिए कभी वृंदावन में रहते समय उनका यही अस्त्र है, लेकिन जब वो जाते हैं द्वारका में मथुरा में तो उसी समय श्री बलदेव प्रभु का हाथ में हाल आभूषण धारण करते हैं। इसलिए वो हाल आभूषण धारण क्यों करते हैं, क्योंकि हाल होता वो खेती करते हैं, कहते कहाँ पर खेती करते हैं, कहते जीवों का हृदय में खेती करते हैं, जीवों का हृदय में गुरुदेव रूप में जीव के हृदय में खेती करके वहां पर कृष्ण नाम रूपी बीज को यहाँ पर बपन करते हुए और श्रवण के कर्म द्वारा धीरे 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 यह लता को धीरे 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 ये भक्तिरूपी लता को बढ़ाते बढ़ाते के रूप में हुए हमें भगवान का चरण तक पहुंचा देते हैं। इसलिए उनका हाथ में ये हाल और मुसल के द्वारा जितने लज्जा दानवों को नष्ट करते हैं और पर हृदय में जैसे खेती करते समय उसमें बड़े बड़े जो मिट्टी उठता है जैसे उसको थोड़ा मार मार कर उसको एकदम पावर जैसे कृष्ण भक्ति बीज जैसे जल्दी जल्दी वहां पर अंकुरित हो सकता है, इसलिए उसको एकदम क्या बोलते हैं उर्वर जैसे उसकी जमीन को बना देते हैं। और वो जो खेती करते हैं वो भी अलग अलग तीन जगत में वो अलग अलग तीन जगत में खेती करते हैं, कहते हुए जब ब्रज में रहते हैं बड़े प्रभु कहते हुए उनका स्वयं कृष्ण का सेवकों को दान वसुधा मधुरों का जितने सारे ब्रज परिकरों को बड़देव प्रभु से प्रकटित होते हैं और वहां पर वे तरह तरह से कृष्ण सेवा को कृष्ण सेवा के लिए तरह तरह रूप में प्रकटित होकर के वो कृष्ण सेवा करते हैं। और जब वे संकर्षण रूप में कहते संकर्षण रूप में जब होते हैं कहते वहां से जो बलदेव प्रभु से जो प्रकटित होते हैं कहते वो महावैकुंठ में द्वारका में वो भी कृष्ण का सेवा के लिए वहां भी जितने सारे चीज प्रकट होते हैं कहते बलदेव प्रभु से, कहते एक कारणवश है विष्णु से जो जीव प्रकट होते हैं कहते कुछ बद्ध जीव और कुछ मुक्त जीव प्रकट होते हैं, उसमें कुछ तो इसी जगत में हम जैसे दुर्भाग्य व्यक्ति आ गए और कुछ शास्त्र देवता कहते कौन सा शक्ति की, कहते भक्ति रूपी शक्ति, इसलिए कहते नायम आत्मा बलहीन न लब्ध, इसलिए आत्मानुभूति आत्मा कहते बलहीन व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए कहते बल को कौन प्राप्त कर सकता है, कहते स्वयं में भक्ति की बल है, कहते बल को
पूरे दिया है, कहते
बल
अंत एक घंटा पूरे
श्री बलदेव प्रभु ही ये बल को देने वाले बलदेव प्रभु, उनकी कृपा से ही जीव भगवत भक्ति जगत में धीरे 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 अग्रसर करते हैं। कहते बलदेव प्रभु कहते ये क्यों दूसरे रूप में प्रकट हुए, हमारे उपनिषद में बताया सब नई बरामे नई बरामे सब द्वितीय अपेक्षा, तेरे भगवान ने जब देखा एक स्वरूप को द्वारा लीला विस्तार नहीं हो सकता है, तो उसी समय भगवान द्वितीय वैचा तो उसके दो होने के लिए कोशिश किया, कहते कृष्ण ही बलदेव रूप में जो प्रकट हो करके, कहते कृष्ण में इतने रस है, रूप गोस्वामी ने कहा अपर कलित दुर्गम कस्य वत करतारी, कहते कृष्ण स्वरूप इतने रसमय स्वरूप इतने रस स्वरूप कृष्ण का स्वरूप, अरे कृष्ण को पता नहीं कृष्ण स्वरूप में कितना रस है, मान हुए एक स्वरूप में राधारायण रूप में प्रकट होकर के, एक स्वरूप में श्री बलदेव प्रभु से प्रकट बलदेव प्रभु रूप में प्रकट होकर के जगत में स्वयं स्वयं रस का आस्वादन कर रहे हैं, इसलिए वे स्वयं अभिन्न स्वरूप होते हुए भी कृष्ण सेवा के लिए उन्हें 10 स्वरूप उन्होंने विस्तार किया है, इसलिए कृष्ण का जितने सारे व्यवहारिक वस्तु आसन छत्र व्यंजन उपादान उनका जितने जो कुछ सबके सब स्वयं बलदेव प्रभु ही प्रकटित हो गए सारे को सारे, इसलिए जगत में वो संधिनी शक्ति की मूल अधिष्ठात्री देवता, इसलिए कृष्ण आने से पहले श्री बलदेव प्रभु पहले आते हैं, आकर के धाम स्वरूप में वो आकर के उनको सेवा उपकर रूप में स्वयं आते हैं, उसको बाद में फिर कृष्ण प्रकट होते हैं, फिर वो पंच रस के द्वारा भी वो कृष्ण सेवा करते हैं, इसलिए सारे रस में तो उन्होंने सेवा किए हैं शांत दास्य सख्य वात्सल्य, लेकिन वो मधुर रूप में, इसलिए वो स्वयं आनंद मंदिर रूप में आकर के वे श्री गोपीनाथ मंदिर में राधा गोपीनाथ मंदिर में आनंद मंदिर रूप में उनको बाम रूप में श्री बलदेव को आनंद मंदिर रूप में प्रकट होकर के वे उनको मधुर रस के द्वारा भी वो उनको सेवा करते हैं। श्री बलदेव प्रभु की बड़े अद्भुत अद्भुत चमत्कार का लीला श्री बलदेव प्रभु का, श्री बलदेव प्रभु सर्वप्रथम हुए धनुकासुर को वध करते हैं, वो गुरुदेव है, इसलिए जो धनुकासुर कहते हैं अज्ञान अविद्या का प्रतीक है, इसलिए बलदेव प्रभु कैसे गया चरण के कैसे पहुंचे तालवन में और वहां पर उन्होंने तालवन में जाकर के उन्होंने कैसे धनुकासुर को वध किया आप लोग सब जानते हैं, इसलिए वो सर्वप्रथम धनुकासुर को वध करके जगत में क्या शिक्षा देते हैं, अगर भगवान को हृदय में बैठना हम चाहते हैं पहले हम ही धनुकासुर को हमें भी मारना पड़ेगा, ये गर्धवासुर को भी मारना पड़ेगा, अविद्या अज्ञान को दूर करना पड़ेगा, इसलिए जो गधा है हम बोलते हैं ना जो गधा है ना क्या गधा मतलब मूर्ख है, क्या हमारे अंदर में भी एक मूर्ख पड़ेगा, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्वपी बना वस्त्र धरे संस्कृत पुरुष पशु न जब गर्भ पत्र पे तो जादू नाम गदाग्र, भगवान जिनको ये मानव जन्म दिया लेकिन जन्म पा करके जो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं कहते तो वो क्या है कहते तो वे वो तो गधा है, हरे हरे मतलब गधा है, फिर विश्वनाथ जी प्रभु कहते हैं कैसे गधा कहते स्त्री पद ताट में गधा है, तो उन्होंने उदाहरण देते हैं कहते गधा वो अक्सर कर गधी को पीछे पीछे चलता है दिन भर गधा काम करता है, काम करते करते सोचता है शायद दिन भर काम किया जब गधी के पास में जाऊंगा शायद गधी बड़े आदर और प्रेम करेगी, लेकिन जब वो गधी के पास में जाती है गधा आदर नहीं करती बल्कि क्या करती है गधा लात मारती है, गधी लात मारती है गधा को, कहते विश्वनाथ जी कहते हैं उसी तरह जो जीव है इस संसार में दिन भर परिश्रम करता है, परिश्रम करके सोचता है जब स्त्री के पास में जाऊंगा शायद सुख मिलेगा लेकिन वहां तो सुख मिलता नहीं भगला मारती है, कहते जीव जो भगवान को भजन को छोड़ करके ये संसार का विषय के तरफ में ये संसार के सुख के लिए जो पाना चाहते हैं कहते उनको तो सुख मिलता नहीं बल्कि गति की उसको लाभ मिलती है, उसी तरह श्री बलदेव प्रभु सर्वप्रथम ये गधापन को उन्हें खत्म किया है, और गधा पीठ के ऊपर भी जितने सारे महिला कपड़ा और जितने सारे सामान को ढो करके ले जाता है, लेकिन उसको मालिक कभी अच्छा खाना नहीं देता, कोई भूसी खाता है, कभी चावल नहीं खिलाता, कभी लस्सी खिलाता नहीं, लेकिन पीठ पर सब कुछ ढोता है। उसी तरह हम भी संसार में सारे बोझ को ढोते हैं। भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा, सही गाथा भैया संसार बोझा बहिन अनेकता, संसार बोझा बहिन अनेकता, क्या तो मैं गधा बन करके संसार का जो बोझ को बड़े दिन तक हमने ढोते रहा, लेकिन जीवन में प्रभु जीवन में कुछ भी सुख नहीं मिला, बल्कि हमें बंधन मिला है। गर्भ गर्भता में बड़ी परिश्रम दार लाती के तगरी नागू चिलक्रम, इसके लिए हमने किया है, कभी हमने किसी को सोचा है, इसके लिए दिन भर गधे जैसे परिश्रम कर रहे, कस्य का पुत्र पुत्रा क्या मोहो है वही कारण, कौन किसको बेटा बेटी है, इस जगत में जो पृथ्वी दिखती है वो प्रेम नहीं, वो संपूर्ण काम है, एक दूसरे से जो आनंद की अनुभूति होता है केवल वह स्वार्थ है, अपना स्वार्थ तो टूट जाए, देखना कौन किसको कितना प्रीति करता है, उसी समय सारे प्रीति खत्म हो जाएगी, इसलिए इस जगत में प्रेम नहीं, इस जगत में काम है, इसलिए हमारे हृदय में ये जो गधापन बैठा हुआ, जिस सांसारिक सुख के लिए हम पागल जैसे हम भागते हैं, श्री बलदेव प्रभु सर्व रखा वो गर्भवास को बंद करके हाँ जीव हृदय में कृष्ण भक्ति बीज को श्री बलदेव प्रभु हृदय में बोलते हैं, कहते बलदेव प्रभु वो द्विपित बंदर को भी मैंने बंद किया, कहते द्विपित बंदर राम लीला में बड़े राम की सेवा की, लेकिन लक्ष्मण के लिए उनको कोई श्रद्धा भक्ति नहीं था, कहते इसका मतलब कुछ है, लेकिन राम को बड़े भक्ति करता है, लेकिन धीरे धीरे रामलीला के बाद में जो कृष्ण लीला में वही लक्ष्मण भी बलदेव प्रभु का रूप में आए, लेकिन इसी अवतार में भी बलदेव का प्रति उन्हें तरह तरह का, जिस समय बलदेव प्रभु अपना महिषियों को लेकर के क्रीड़ा विलास कर रहे थे उसी समय तरह तरह से उनके प्रति उल्टा सीधा व्यवहार किया, बलदेव प्रभु को सिर्फ किया उसको माफ करने के लिए, लेकिन इतना उल्टा सीधा किया लास्ट में बलदेव प्रभु फल से खेचे और मुसल से मार करके उसको चकना तो कर दिया, कहते उन्होंने क्या शिक्षा दिया, कहते उसका नाम था दुई बीज, दुई मतलब दो, बीज मतलब वो चाहे जानना, इसका मतलब है हम तो खूब भगवान का भक्ति करेंगे, खूब भगवान का नाम करेंगे, लेकिन गुरु जी को आदर नहीं करेंगे, उनका भक्तों को भगवान से अलग समझते हैं, भगवान को भक्ति करें लेकिन साधु गुरु वैष्णव की हम सेवा नहीं करते, उनका अलग दो दो समझते हैं, लेकिन गुरुदेव कौन है, कहते साक्षात हरि वेना समस्त शास्त्र, कृष्ण कहते हैं आचार्य मान विजानियार, आचार्य मेरा ही स्वरूप है, और जस्य देव पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु, जैसे भगवान का प्रति उसी तरह गुरु जी का प्रति बल्कि ज्यादा करनी चाहिए, ऐसे जो व्यक्ति भगवान से गुरुदेव को भक्तों को भगवान को भक्ति करते हैं लेकिन गुरुदेव को अनादर करते हैं, बलदेव को कहते हैं मैं स्वयं उसको वध करता हूँ, उसको मैं स्वयं मारता हूँ, इसलिए आप लोगों को पता है कैसे बलदेव प्रभु हाँ जिस समय हुए कौन सा जंगल हुए नैमिषारण्य में जा पर पहुंचे वहां पर कैसे बलदेव प्रभु का अनादर करने का नाते हाँ लोभासन सुत वहां पर भी बलदेव प्रभु उनको भी बच गया, इसलिए जहां पर कहीं गुरु वर्ग को अनादर किसने किया उसी समय बलदेव प्रभु उनको छोड़े नहीं, उनको छोड़े नहीं, लेकिन वही बलदेव प्रभु कहते तरह तरह रूप में वो कृष्ण सेवा करते हैं हर समय, लेकिन कभी कभी बलदेव प्रभु में और कृष्ण कभी कभी विरोध भी देखने को मिला, छोटे छोटे कभी विरोधाभास जैसे कभी देखने को मिला, हाँ कृष्ण कुछ कर रहे हैं लेकिन बलदेव प्रभु को देखने को मिला वो कुछ दूसरे दूसरे दिन कर रहे हैं, लेकिन तत्वतः कि जगत को कभी कभी शिक्षा देने के लिए उन्होंने विरोधाभास कभी उनका अंदर दिखाई पड़ा, जैसे जिस समय सुभद्रा की अपहरण हो गई हाँ बलदेव प्रभु चाहते हैं सुभद्रा जी को उल्टिया करे श्री दुर्योधन को साथ में शादी कराए, क्योंकि बलदेव प्रभु उनका दो शिष्य है एक भीम और एक दुर्योधन, दोनों को उन्होंने गधा युद्ध उन्होंने सिखाया इसलिए गधा युद्ध अभी, लेकिन वो ज्यादा छुटे हुए श्री दुर्योधन का प्रति, इसलिए उनको इच्छा है सुभद्रा के साथ ही दुर्योधन के साथ में हो, और दुर्योधन भी सेवा करके गाँव भैया तो भोले बड़े सेवा
बड़ा विग्रह काम इसलिए हुए और दूसरे जो दो अवतार हुई जैसे
भगवान का इच्छा के विरुद्ध बड़े बनकर आए, तो बड़े इसलिए बनकर आना चाहे केवल सेवा की भावना के लिए। और नित्यानंद प्रभु अवतार उन्होंने प्रेम की पार पड़े तो उन्होंने इतना बढ़ाया, कहते संसार में पार भया भक्ति रस आगरे जे डूबी में से भजत निताय जान करे हे न निताय जी ने भाई राधा कृष्ण पाई जनाई निताय करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे आवद करुणा सिंधु कातिया कुमार। कहते नितानंद अवतार बलदेव प्रभु जिस प्रेम की जैसे जम कल रूप शरीर न धारत, जैसे श्री रूप गोस्वामी जैसे प्रेम जैसे बद्ध था, जैसे रूप गोस्वामी ने वो कपाट को जैसे उभार दिया क्या उसी तरह था लोचन दास ठाकुर कहते हैं श्रीमद नित्यानंद प्रभु आकर के इतने दयालु इतने कृपालु बने कैसे निताय चैतन्य प्रभु नाचे रहे हमारा मन है ना दयालु नांगे मार के प्रेम दे पावे प्रेम का जो मार खा कर भी प्रेम दिया प्रेम दिया और आबद्ध करना जो सिंधु प्रेम की जो सिंधु था उन्होंने आकर के मुहान मतलब एक तरफ में पानी हो दूसरे तरफ में खाली हो मुहान मतलब जिसको काटने पर जैसे पानी जाकर के सभी को सामने जो आए सभी को बहा लेते हैं उसी तरह बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु रूप में आकर के महाप्रभु को जो प्रेम की जो भंडार उन्होंने मुहान ऐसे काटे और प्रेम की बाढ़ में उन्होंने सारे जीव को उन्होंने बहा दिया।
बस सभी तो मत बोलो
गुरुदेव का रूप में आकर के हम लोग जो है कृपा कर रहे हैं इसलिए हम उनको चरणों में प्रार्थना करते हुए हम लोग कृपा करें रघुनाथ जी जैसे गुरु वैष्णव के चरण में सेवा करते हुए जैसे जीवन हमारे वंशा कल उदय में
सभी कुछ तो तुम ही ने बोल दिया और कुछ रखा ही नहीं तो फिर क्या बोलेंगे दूसरे। बहुत सुंदर बोला ओ यू शुड ट्रांसलेट यू शुड टेल इन ब्रीफ यू शुड टेल ऑल व्हाट ही टोल्ड
Krishna Balaram, they both were crawling together. But we should tell that what is written in Garga Samhita, it is not true, you cannot tell. So we should make a compromise that in other cults, oh, it was like that.
So Bhagavan performs lila in every day of Lord Brahma, therefore Garga Samhita cannot be wrong, because Gargachara, he was directly there in the Narakana Sanskar, Krishna Bhavan, therefore what he says must be true, therefore must be in different kalpas, different days of Lord Brahma, and sometimes very prominent times 1 year earlier. So very astonishing thing came, that when the Krishna Baladeva describes the first six sons of Devaki, they were killed by Uncle Kamsa. But this Bhagavatam describes the seventh birth describes to be a miscarriage. But really, Gurudev nicely describes this is not actually completely true. It's given in a hidden form. Actually, Baladev appeared first in the form of Devaki in Mathura. Who is that? That is not Devaki, that is not Rohini Nandan, that is Devaki Nandan. Then he appeared there. And he stayed in the womb, how many months he was there? Seven months. First in the womb of Devaki Mata. Then, at 7 months, Bhagavatam says that she had a miscarriage. But really what happened, at the end of 7 months, that Devaki Nandan, that Baladev in Mathura, he transferred himself to the womb of Rahini here in Vrindavan. And there he stayed in the womb of Rahini for another 9 months. Therefore, total of 16 months, the Baladev was in the womb. Therefore, the ankh, or the expansion of Baladev in Mathura, merged with the original form of Rahini Nandan that is always present in Sri Rajamandal. Baladev, how he expands himself in so many ways for Krishna's service. He expands himself as the three Purush avatars. First, that Baladev in Vrindavan, Rahini Nandan, he expands himself into Mathura. That Mathura's Baladev expands himself into the Adi Chaturvyuha, situated in Dwarka. Vasudev Sankarsan Prajumna Adibuddha. Then that Sankarsan in Dwarka, in the Adi Chaturvyuha, expands itself into the second Chaturvyuha, which are always present in Vaikuntha. Then that Mahasankarsan, he comes in the form of Mahavishnu. That, then he expands himself also in the form of Garbhadaksai Vishnu, who is situated in every universe from his navel country. Lotus on the top of that navel sits Chakur Ramaji. Then again he expands himself into the form of Paramatma in the heart of every jiva as Kirtanaksai Vishnu. Therefore, really, he is the residing deity of Sandini Shakti. Sandini means existence. Because everything we see, spiritual and material, everything owes its existence upon the mercy of the energy of Sri Baladev Prabhu. Therefore, Sri Gargacharya, he did not perform the Namkana in Mathura. Therefore, Gargacharya came in a secret, hidden way. Otherwise, if comes Maharaj knows that Gargacharya has performed the name-giving ceremony of Krishna Balaram, then immediately he will understand, because Gargacharya is the guru of the Rishnis, must be the Krishna Balaram somehow related to Vasudev Maharaj. Therefore, he went there in a hidden form. So, Nanda Baba, he gave such a nice welcome to Sri Gargacharya. Nanda Baba, how great is he? Oh, who am I? I'm fallen in Maya with my Krishna and my family. But you are a great saint. For no self-interest, you move here and there to purify the fallen householders. So then, Rahini and Yasoda Mata, they wanted to test Gargacharya. But does he really know astrology? Like a real astrologer, just by looking at the lines on your forehead, they can tell everything. Therefore, if you can't test Gargacharya, they swap the babies. Therefore, Rahini had Krishna and Sri Yasoda had Balaram. But Gargacharya, he's an all-knowing Vaishnava. Not so easy to treat him, therefore he says, I am Rahini, Rahini Nandan. Pointing to Baladev, who was on the lap of Yasoda, said, this is the son of Rohini. And he described his position. Because he has unlimited strength, Balu, therefore his name is Baladev. perform bhakti, what type of strength we need? Only taking proteins and vitamins and work, this will not help your bhakti. Therefore, what type of strength we need in bhakti? We need bhakti bhava. Who is giving that? That is given by Baladev. Also, his name is Ram, because he is situated in the hearts of all living entities. He is also known as Sankarshan, because he attracts all jivas to the service of Krishna. What is the proof? Gurudeva, that's the sort of Paramahansa. Because he is an expansion of Baladev, that all are attracted to him. He engages all in the service of Krishna. Therefore, even though Baladev, of course, he is also Bhagavatattva. He is also Visayatattva. He also is like Bhagavan, the enjoyer. But still, he always has the mood of being shelter or Ashrayatattva. Therefore, he gives shelter to all the jivas and engages them in the service of Krishna. This is Sri Baladev Prabhu. So Baladev, he has a special expansion or special mercy potency in this material world that is the form of Sri Gurudev. So therefore, Sri Baladev Prabhu, he is Akanda Guru Tattva. He is the Samasa Guru Tattva. He is the sum total of all spiritual masters. From the beginning of Lord Brahma coming down through Nanda, Vyas, the Goswamis, all our manifestations are Sri Baladev Prabhu. Therefore, Sri Guru Padma in this world, he attracts all living entities, but not for his own enjoyment. We should not think, oh, Guru is collecting so much, he is having a good life, I will also become Guru, I can also enjoy it. No. Baladev, even though everything is there for him, he keeps everything for the service of Sri Krishna. So, Rasananda Guru, he took, I was planning to speak on these pastimes, but Rasananda Guru, Grilla, he took, also, Surviving, he took that one also. So, I want to tell one more thing. That Baladev, even though Krishna kills many demons, those demons represent different anattas that we all have. So Baladev, he performs special function of killing some special demons. Because there are some special anattas that we have that only the spiritual master and the Vaishnavas can destroy. There especially there is the one of Paramasura. Lamba means very high. Pakasura Lamba. Means he is very tall. Paramasura had a very, very high desire. I will also become spiritual master. How can I do that? First I have to finish Baladev Prabhu. Therefore, Paramasura came disguised in the form of a coward boy. Therefore, Thakur Bhaktivinoda said, we should be careful in Kali Yuga, because many, many false devotees will come disguised as devotee to steal the position of Baladev, to steal the position of Guru Padapatma. But they are killed by Guru Tattva himself. Therefore, Thakur Bhaktivinoda, he said, Ajoev, Kali Chela, Mata Veda, Kopin Pada, Tilakana, Pate Mala, Sahaja Vajana, Kochana Brahma, Tumana Shangya, Kone Dvala. Means, like Lamasura took the form of false devotee, therefore many false devotees, not many, I am also one of them. Mata Veda, shaved head, Kopin Pada, means sannyasi, Tilakana, when he knows he has Tila, Pate Mala, Harigo, Harigo, Gade Nante. Everybody calls him Cha-Cha. Rama. Tumar Sangye Porina Bala. Sangye Niye Porina Bala. And the only reason he's in this association is he's looking for someone's wife. Therefore, Paramasura took the form of false devotee, false guru. Then we thought, Krishna Balarama together, maybe difficult to kill him. First, let me kill Baladev, because he is Shakti, he has strength. If I kill him, then Bhagavad Krishna will have no strength, and I can finish Krishna very easily. Therefore, I'm cutting the story very short. Therefore, Krishna and Balaram divided into two groups, and they were engaged in their lila. The rule was the losing group has to carry the winning group on the shoulders. Therefore, what are the glories of Vrindavan? Sometimes when the group loses, then Krishna has to carry Sridhar on his back. Then Krishna becomes angry. Why am I carrying you on the back? I won't carry. I don't like the rules of your game. I'm not playing. Then Sridhar becomes very angry. Hey, again cry, "Oh brother, don't throw me from your den." Tumhe tuma bina kiya chhe ama. Without you, who belong? I do not belong to anyone. Therefore, Pralhada saw. He took Baladeva on his shoulder. He thought, "I'll take Baladeva to a lonely place and then I will kill him." But as he was carrying, then he realized Baladeva could understand this is not one coward boy, this is one demon. Therefore, Guru means also heavy. Not because he eats too much. Guru Tapa means heavy because you cannot shift him from the service of Krishna. He is not attracted by any yoga or any city or any bowl, any aishwarya, any ladies, nothing. You cannot move him from the service of Guru Gauranga. Therefore, he is very heavy. Therefore, Pralhada saw. He could realize the heaviness of Guru when Balaram began pressing his weight on him. Then he could not tolerate the pressure from Balaram. What happens? His real sarup came out. Therefore, Balaram could see he was not a sakya, he was not a devotee, he is a demon. Therefore, Balaram, this is called his career, he finished him. Therefore, these are some of the glories of Balaram Guru. You should think, by the mercy of Sri Balaram Guru, we are here in Vrindavan. How much we are lucky. Therefore, Sri Bhaktivinoda Chidambaram said, we are all Tatasta Jiva. That means marginal potency. But Vrindavan is Antaranga Shakti. Then how we can understand something which is higher than our own sarup? How can we walk here on the chest of Baladev Guru? Therefore, Shiva Chidambaram said, in Vrindavan we have to learn to walk on our hands. So Baladev Guru, he is very kind. He's come as the form of Gurudev, he's come as the form of Dham. So I'm hoping Baladev Guru may forgive my offenses which are limited. And one day give me to the service of God. Sri Baladev Prabhu ki.
Good translation. He added some more points.
Thoda sa sankhet mein kuch bolo.
Ab Tirth Maharaj bolenge tab phir. Aur ye to sabhi kuch bol diya.
Muni Maharaj ka chance dena acha hai unko diya nahi chahta se ek baar yaad
nahi. Wo sune to pehle. संक्षेप में ही बोलना
गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः संकट संकारो साई गर्भोदसाई चतयोदिसाई नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदाय कलो कलमस नाशाय जहन्वापतये नमः राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निर्वहन शीत विनुरो तलानि वनानि सन्ति संकुला श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मध्य सुपात करना निद्रा कृष्ण विष्णुपाद वंदना गोसाई महाराज अनंत कोटि दंडवत प्रदान करते हुए उनके ऐसे कृपा की प्रार्थना करता हूँ तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपात करना विष्णुपाद अश्वत्थ भक्ति वेदांत नारायण गोसाई कृष्ण कहीं आत्मा भी ग्रहण एक ही स्वरूप द्वारे भिन्न मात्र का है आद्य काय कृष्ण लीला रहता है बलराम जी जो है कृष्ण से अभिन्न ही है एक ही विग्रह केवल शरीर एक गौर है एक श्याम है एक पीताम्बर धारण करते लीलाम्बर धारण करते हैं बाकी सब समान है और कृष्ण लीला के सहायक है जहां जहां पर कृष्ण लीला में कृष्ण के प्रति किसी प्रकार का आघात होता है तो बलराम जी उसके सहायक है इनके कृष्ण के प्रति जो प्रीति है जो वात्सल्य है समस्त रस सख से लेकर के दास से लेकर के जितने भी जो रस है उन रसों के द्वारा कृष्ण को इसी को कहा गया रसा नाम आधारम रसिक सदवर वैष्णव समस्त रसों का आधार विशेष करके जब कृष्ण के प्रति कोई कटाक्ष करे कृष्ण को निंदा करे तो बिल्कुल सही ये सब सहन कर सकते इनको कोई मारे गाली दे बर्दाश्त करे लेकिन कृष्ण के ऊपर यदि कोई कुछ बोल कथा आती कि जिस समय जामवती का पुत्र साम स्वयंवर हो रहा था हस्तिनापुर में और दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा उस स्वयंवर में आई हुई थी वरमाला लेकर के इनको पता चला ये क्षत्रिय निकले चले गए स्वयंवर में सज धज करके सुंदर होते हैं गए तो वहां पर दुर्योधन आदि इनको अस्वीकार किया इधर नहीं आना पता नहीं तुम्हारे माता पिता का कोई ठिकाना है कृष्ण को कोई ग्वाला बनता है कुछ बोलता है कोई मालूम जो बोलता है उग्रसेन महाराज के चौकी के नीचे बैठने वाले चरणों के नीचे कोई राजा वाला तुम्हें आ गए इस तरह से उनको विरोध किए अर्थात अंदर उनको जाने नहीं देना चाहते थे तो इन्होंने अपने पराक्रम से वहां के जितने भी क्षत्रिय थे सबको पराजित करते हुए स्वयंवर से लक्ष्मणों का अपहरण कर लेकर के चले आए जब अपहरण करके चलने लगे तो उस समय बड़ा अपमान लगा विष्णु पितामह बड़े बड़े द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण जैसे धनुर्धर लोग जिस सवाल को वहां से ले जाए उनको भी सहन हुआ उन सब ने एक साथ उनको पराक्रमण किया और आक्रमण करके शाम को उन पर पराजित किया और बांध दिए उस समय बलराम जी जब सुने गए कृष्ण ने ये सुना बलराम जी गए और नहीं चाहते कुछ हो जाकर के दुर्योधन को समझाने लगे कि क्षत्रियों का धर्म होता है यदि इसने ऐसा कुछ किया तो आपको इस तरह से इसके ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए एक के साथ एक ही युद्ध करना चाहते तो सब मिलकर के हमारे भतीजा को पराजित किया अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ आप शांति से लक्ष्मणा को विदा करें इसी भी हम लोगों का अच्छा दुर्योधन सुन करके एकदम से आग बबूला को क्या बोल रहे चरणों के नीचे रहने वाले जूते के समान जूती के समान हमारे मस्तक को उठना चाहते बाद में सच है कभी कभी भूल भी ना चरणों को प्रहार खाकर के ऊपर को उत्साह मिलता है और मुकुट में आंखों में और पूरे मस्तक पर जाकर छा जाता है अपना आधिपत्य जमा लेते श्रेष्ठत्व को प्रतिपादन करने लगता है जैसे अर्जुन का कहां से तुम समुद्र के भीतर छुप कर रहने वाले अब कहां हम लोग तुम कोई राजा महाराजा नहीं हो एक साधारण व्यक्ति के समान हमारे चरणों को पैक कर जो जूता इस तरह से कुछ ऐसा तुम्हारा कृष्ण है ये सुन करके एकदम से बलराम कहने लगे तुम लोग तुम्हें हो क्या गया तुम जानते हो कृष्ण की महिमा को जस्य पाद पंकज रजस्न पनो महंतो वाचन तिमापति तमवत्य जस्य पाद पंकज सलिल सृष्ट मूर्धन्य आधाय शिवो शिवो भू
तदाय सहस्र जीव इदम ब्रह्मांड आवति सशस्त्र भाति। बलराम जो शक्तिशाली था, दो बल है जिनके ध्यान से कला अनंत से इस ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर धारण करते, जैसे कोई सरसों की दानी को धारण, उनकी महिमा को कौन बोल सकता, जिन्हें उस ब्रह्मांड के भी धारण कर रखा, उनको पता भी नहीं चलता कि ब्रह्मांड कहाँ है मेरे मस्तक। हजार खानों के बल में इतने बड़े 50 करोड़ डोजन का जो ब्रह्मांड है, एक ही नहीं ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों अनंत है, जो बलराम से कला है, अंश के अंश के अंश को कला होती है, और उसको हम धारण करते हैं, और धारण करते हुए कृष्ण के नाम में लीला कथा में ऐसे मत रहते हैं, उनको वो सीधे कहा, जैसे कोई मतवाले हाथी के मस्तक पर सरसों के दाना रखा जाए, उसको क्या पता चलेगा। गाय गुणानंद सतन आदि देव अशेषो नाम संवसी। जब मैं पुरानी बात दुर्योधन की याद आई कि विदुर चाचा और सब बोलते थे इनके संबंध में, आज मैंने सच में देखा इनकी महिमा, इनका बल तो कौन गिनती करेगा, चरणों में गिर पड़े क्षमा करो। आज भी हस्तिनापुर बलराम जी की महिमा को गान करते हुए उस गंगा की दिशा को झुका हुआ है, बता रहे हैं कि बलराम जी क्या क्या उनका बल है। ऐसे बलराम जी के प्रति यदि कोई अपमान करे सहन कर लेते, लेकिन ऐसे बलराम जी के जो प्रिय जो कृष्ण गौर हरि है, उनके अपराध को उनके निंदा को कर सकते, क्योंकि कृष्ण लीला के सहायक है। कृष्ण किसी जिसमें कृष्ण रुक्मिणी जी के हरण पीले जाते हैं, जब उनका पत्रिका है बलराम जी गए पीछे, बात्सल है बलराम जी का तत्व जानते हैं कि स्वयं भगवान सब कुछ कर सकते, लेकिन बात्सल जो है उनको रुकने नहीं दिया, कहीं कुछ हो जाएगा वहां झगड़ा होगा, कौन संभाल जाएगा, कौन देखेगा, पीछे पीछे भागेगा। जिस समय लक्ष्मण रूप में राम जी की सेवा में थे, जब जनकपुर के पुष्प वाटिका में राम जी गुरुदेव के अर्चन के पुष्प लेने जा रहे हैं, देखिए कृष्ण भी राम जी भी इनके अपने लक्ष्मण जो कितना प्रेम करते, इनके अंदर में कोई दुराव नहीं है, अपने हृदय के संपूर्ण भावों को बोल देते, जानते हैं कि जो लक्ष्मण है वो मेरा ही अपना बीत गया है, मैं जो कुछ बोलूंगा वो सही सही मेरे को समझेगा, और मैं क्या सोच रहा हूँ उस समय उनको सेवा कर पाएंगे। पुष्प वाटिका में प्रवेश हुए, फूल को चयन कर रहे थे, फूल तोड़ते तोड़ते राम जी के मस्तक मुख पर श्वेत के पसीने आ गए, उसी समय में क्या देखते हैं, जानकी जी अपने सखियों के साथ वो भी गौर पूजन के लिए आ गए, और उसी मार्ग से गुजरे राम जी उनका प्रथम दर्शन, देखते के साथ सीता जी तो नहीं देख पाई, राम जी देख पाए, लक्ष्मण जी से कहने लगे हृदय के वो लक्ष्मण जी, मैं सच कहता हूँ रघु बंसी है, और मेरा मन कभी असत पथ को नहीं जाता, कभी मन कुछ सोचता नहीं, लेकिन आज मुझे कुछ ऐसा हो रहा है, तुम बताओ क्या। वहां पर राम जी बोले लक्ष्मण जी से, अपने हृदय के भाव बता रहे, लक्ष्मण बैराग की मूर्ति है, उनके सामने अगर श्रृंगार का वर्णन करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, संसारियों का आगे जैसे बातें करेंगे तो वो लोग उसका नाटक कर डाले, लक्ष्मण को अपने हृदय के भाव बताते हैं, ये लक्ष्मण ये जो देवी आ रही जानते कौन है, मैं बताता हूँ, तात जनक तनया रसोई धनुष जग के कारण होई, जासु बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन, ये लखन तो वही जनक नंदनी जानती है जिनके लिए जनकपुर स्वयंवर हो रहा है, जिनके लिए हम गुरुदेव के साथ स्वयं के साथ यहाँ आए हैं, और आज उनका इस स्वयंवर में धनुष जग होगा जहाँ पर बड़े बड़े राजा लोग आए हैं, लेकिन आज मेरे दिल को देख करके कुछ अटपटा सा हो रहा है, इनकी जो शोभा है मैं कह नहीं सकता, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, प्राकृतिक सौंदर्य नहीं है, ये सौंदर्य भाव के द्वारा देखते हैं, महाभाव का जो प्रथम स्तर है वहां तक के सौंदर्य का प्रकाश है, इसको देख करके मेरा जो मन जो कभी क्षुभित नहीं होता है क्षोभ को प्राप्त। लक्ष्मण जी राम जी के मनोभाव को समझ गए, ओ बोले कुछ नहीं, उनको पकड़ करके थोड़ा आगे ले गए, अब बोलिए आप आराम से बैठिए, मैं थोड़ा आपको श्रृंगार करूँ, आते नहीं आते राम और लक्ष्मण दोनों देख करके तुरंत जाकर के बोलती है जानकी, तुम ध्यान बाद में करना, गौरी पूजन बाद में कर लेना सखी, अभी से तो सौंदर्य आए उनका तुम निहार। सखी भी बड़े चतुर ध्रुव के समान हो, क्या है? अरे सोच ले मैं क्या हूं, यदि मैं कहूँ कि दो राजकुमार यहाँ पर आए हैं फूल तोड़ने के लिए तो जानकी जी बोलेंगे तो कैसा राजकुमार जो स्वयं फूल चयन करने आए। राजकुमार तो होते जिनके नौकर सेवक फूल तोड़ के ले जाते पूजा पाठ जो भी जरूरत हो, तो वहां पर सखी थोड़ा बात घुमा करके झूठ बोल। कभी कभी भगवत सेवा में झूठ भी बोला जाए तो पाप नहीं होता। मत निमित्तं कृतं पापं मत धर्माय कल्पते और मामा अनादित धर्म की पापों से आप मत प्रभाव। तो सखी बोल रही है देखकर बाग कुमार दो आए नव वयस सब भाती है। दो राजकुमार बाग देखने के लिए फूल लेने में वो तो दृष्टा है देखते हैं देखने के लिए बड़े सुंदर कैसे है। श्यामल गौर कहु किनी बखानी जीरा अनयन नयन दिनवानी। एक श्याम वर्ण कर एक गौर वर्ण कर कैसे कहो 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 बोले करने वाला तो देखा नहीं और जिसने देखा वो बोल नहीं क्योंकि जीरा अनयन नयन दिनवानी। जीवा कह सकती है लेकिन अंधी है। जीवा ने सौंदर्य को स्वयं दर्शन नहीं किया, आंखों ने देखा लेकिन गूंगे हैं, बोल नहीं सकते, इसका शब्द नहीं है, ये तो स्वयं चल करके देखने की विषय स्वयं अनुभव अनुभव गम्य है। आप स्वयं चल उस समय जब आए लक्ष्मण जी देखे राम सच्चा करके लता के होठ में जाकर छुप रहे हैं, जानकी जी को परस्पर दर्शन करने को उनका हृदय जो अस्तंभित हो जा रहा है, अस्त सात्विक भाव का उदय हो रहा है, फिर से जानकी को वो देख नहीं पा रहे। लक्ष्मण जी ने लता को जो आवरण था उसको हटा दिए अनावरण कर दिए और उसके मत से राम जी ने जानकी जी को देखा और जानकी जी ने राम जी को देखा। लक्ष्मण जी आनंदन हो गए, सोचे आज हमारा सेवा सफल हो गया। जानकी जी राम जी को देखने मात्र से प्रथम दर्शन से आके बल कर और मन में सोचे दोबारा देखो कहीं तो दृष्टि न मिले, एकदम से हृदय में उनको धारण करके ताला लगा दिए बस सहज सामरो तो सहज सामरा मेरे हृदय से मजबूत। लक्ष्मण जी समझ गए जानकी जी को लेके आए और स्वयं में जाकर के सब उपस्थित होते हैं। और यहाँ की जो लक्ष्मण जी की सेवा राम जी जब धनुष तोड़े तो कैसे पृथ्वी को दबाते हैं, जब परशुराम जी आए तो उस समय लक्ष्मण जी आगे बढ़ करके स्वयं जहाँ लक्ष्मण होते वहां पर राम जी को आगे नहीं जाने देते, स्वयं उनसे बातचीत करने और उन कितने प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ जिससे भरत जी आते राम से मिलने के लिए। लक्ष्मण जी मन में सोचते हो भरत जी का दूसरा चाल, पहला चाल तो राम जी को बल में भेज दिए, हम दूसरा चाल है राम जी का सहाय समझ करके और चाहते कि मैं इनको ही पराजित कर दूं समाप्त कर दूं अयोध्या को निष्कंटक बना, ऐसे भाव उठने लगे। आने तो कोई बात नहीं मैं भरत को देख लूंगा, उस पर मैं छठी का चूड़ी याद मिलवा दूंगा। राम जी कहने लगे अरे लक्ष्मण ऐसे भरत के प्रति भरत कभी मन हमारे प्रति दुविधा दुर्विचार नहीं हो सकता है, मैं जानता हूँ भरत कौन है, भरत शरीर को राम सन्नी राम जप जग भरत जप जी, भरत के समान राम के कौन प्रिय में सारा जगत तो राम राम करते लेकिन भरत राम जी भरत भरत के क्या करेगा। इस प्रकार यही बलराम जी अनंत रूप धारण करके निवास सच्चा आसन पास कांस गोपाल धान वास्ता आतक बार नाजी शरीर भेद स्तर शेष ताम गो जसो चितो शेष रितो सरी ये आसन भूषण बन व्यंजन छत्र चावर होकर के अनंत वैकुंठ अनंत संकर्षण रूप होकर के गर्भो दशाई कानन साई गोपी साई से अनंत रूप धारण करके उनके लीलाओं में सहयोग करे सेवा करके ऐसे अनंत देव के महिमा को कौन वर्णन करेगा जो कृष्ण के समान संपूर्ण लीलाओं को भी धारण करते। कविराज वृंदावन ठाकुर जी बोले कि अन्नपुंसक जैसे नाचे कहे बलराम राष्ट्र का कौन शास्त्र है, ये तब परिहारी यदि केवल पाप निंदा करे तब सारे लाठी मारे सिर रूप करे गणनाथ जमीन पानी प्रतिशेद वा सौंदिकाल तथापि ब्राह्मणों बंदे नित्यानंद प्रदान हो जाओ। वृंदावन ठाकुर जी के नित्यानंद प्रभु के प्रति बलराम जी के प्रभु जो निष्ठा अपने आप में अपूर्व अनर्वचनीय कहते इतना सुनने करने के बाद भी अगर कोई नित्यानंद प्रभु जी को निंदा करता है कि कहाँ राष्ट्रधर किए जाए, कहाँ ऐसे किए, कृष्ण के समान कैसे हो सकते हैं, वो कृष्ण की बराबरी कैसे कर देता है, इससे दुष्ट को ऐसे पापी के मैं सिर पर लात मारू जिससे कम से कम चरण धूली पड़ के उसका सिर बुद्धि सुधर जाए, चरणों के प्रार्थ उसका मस्तक सही हो जाए और नित्यानंद बलराम तत्व को समझने में समर्थ हो जाए, ऐसे नित्यानंद प्रभु को कौन महिमा बोल। बोलिए नित्यानंद प्रभु की जय, बलराम प्रभु की।
इसके बाद में श्रीमान तीर्थ महाराज जी श्री बलदेव तत्व के संबंध में बोलेंगे। बहुत अच्छा अच्छा वक्ता लोग बहुत सुंदर बोल रहे हैं।
तदनंतर उपस्थित पूजनीय सन्यासी वृंद एवं वैष्णव जन माता जी ने सभी को मेरा प्रणाम। आज प्रतिवर्ष के बाद ही बड़े सौभाग्य का दिवस है जो कि शिष्य बलदेव प्रभु जी के आयुर्वाद तिथि है। इस विषय पर हम लोगों ने बहुत सारी कथाएं सुनी है। अभी अभी हमने ये भी सुना है कि बलदेव प्रभु संगनी शक्ति के अधिष्ठात्र देवता है, के अब तो इसमें से अब और जो भक्ति स्वरूपी है वो भक्ति आधारित होती है कि एक आधार संधिनी शक्ति ही आधार है, बिना आधार के कोई वस्तु आधारित नहीं होता है। इसलिए संधिनी शक्ति जो है बलदेव प्रभु आधार है जो कि संपूर्ण विश्व संसार उन्हीं से ही प्रकट हुआ है। जितना भी चीज जगत चिन्मय धाम सभी कुछ बलदेव प्रभु से ही आया है और उन्हीं में ही समस्त प्रकार की लीलाएं जितने विलास जो कुछ भी है सभी कुछ बलदेव में ही स्थित होकर के ही है। इसलिए राधा कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं सबका आधार यदि देखा जाए तो बलदेव प्रभु है और प्रत्यक्ष रूप में प्रकट रूप में साक्षात रूप में भी बलदेव प्रभु को आर में रख करके यानी बलदेव प्रभु को सामने रख करके पीछे राधा कृष्ण की लीलाएं हो रही हैं, क्योंकि बलदेव प्रभु के वसन जो है नील वसन है और राधा जी की साड़ी भी नील साड़ी है, जहां कहीं छिपाना भी होगा तो छिप जाएगा, उसमें कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हर समय हर लीलाओं में बलदेव प्रभु जी आ जाते हैं जिससे कि किसी को दूसरे को समझ में नहीं आए। अच्छा दूसरी बात जबकि देखा जाएगा कि बलदेव प्रभु कृष्ण के अभिन्न विग्रह हैं, एक ही स्वरूप तो है भिन्न मात्र का, एक ही स्वरूप है शरीर से भिन्न भिन्न देखने में, एक श्याम बनना तो दूसरे गौर बनना, केवल इतना ही अंतर मिलेगा और कोई अंतर नहीं है। बलदेव प्रभु जी ब्रज में जो कि वैभव तत्व के रूप में कृष्ण के स्वयं ही प्रकाश है जो अभिन्न स्वरूप में, और वही जब कि द्वारका में होंगे तब वैभव विलास विग्रह हो जाते हैं। तो यहाँ ब्रज में वैभव प्रकाश क्योंकि माधुर्य अवतार माधुर्य विलासी राधा के कृष्ण के साथ में बलदेव प्रभु भी इसी प्रकार वहां पर सिंगा और तो उसमें सिंगा धारण करते हैं एवं सिंगा बजाते हैं। यहाँ पर कोई अस्त्र धारण नहीं किया, जैसे कृष्ण ने कोई अस्त्र धारण नहीं की चक्र धारण नहीं किया, तो इसी प्रकार माधुर्य विलासी जहाँ पर माधुर्य की पराकाष्ठा है वहां पर ऐश्वर्य को एक तरफ छिपा के रखा, और जब मथुरा और द्वारका में आए यही भक्तों के लिए अतिशय चमत्कारकारी है। इसलिए श्रीमद् भागवत जी ने कहा है कि भगवान ऐश्वर्य में रहते हैं और ऐश्वर्य में लीला करते हैं, परंतु ऐश्वर्य में रहते हुए जगत के लोग बिना ऐश्वर्य के भगवान को पहचान भी नहीं कर पाते और न कर सकते। केवल ऐश्वर्य को देखता है, जब ऐश्वर्य को देखेगा तब पहचानेगा, नहीं तो कहेंगे कि अरे ये कौन आ गए। जैसे देवकी वसुदेव के सामने भगवान कृष्ण जब आए चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के दिखाया, कृष्ण ने कहा यदि मैं ये चतुर्भुज रूप नहीं दिखाता तो मुझको भगवान रूप में तुम विश्वास नहीं कर पाते, इसलिए मैंने ये स्वरूप दर्शन कराया। तो इसी प्रकार देखा जाता है कोई भी व्यक्ति अब भगवान के ऐश्वर्य बिना वो समझ नहीं पाते, तो ऐश्वर्य को ही देखते हैं तो माधुर्य को समझ नहीं पाते। इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो मेरा माधुर्य भी कैसा है, कि मैं भक्तों की कितनी वशता स्वीकार करता हूँ और कैसे मैं उनके साथ में लीलाएं करता हूँ। ये ब्रजभूमि में ही माधुर्य को प्रकाशित करते हुए लीलाएं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जैसे माधुर्य को प्रकाशित करते हुए लीलाएं की, तो बलदेव प्रभु भी माधुर्य में ही रहे, माधुर्य को छोड़ करके ऐश्वर्य में नहीं है। और माधुर्य ऐश्वर्य तो उनके पीछे पीछे और उनके साथ में अंदर निहित रूप में अवस्थित है। इस प्रकार ऐश्वर्य माधुर्य का ही दोनों संघर्ष लगता है कि कौन आगे बढ़े और कौन भी पीछे जाए। तो ऐश्वर्य को पीछे करके माधुर्य को आगे बढ़ाते हुए अतिव चमत्कारपूर्ण लीलाएं। इस प्रकार बलदेव प्रभु जी गुरु तत्व के रूप में सबको शिक्षाएं दी हैं। जब तक गुरु हृदय में प्रवेश नहीं करें और जिस शक्ति को प्रकाशित नहीं करें तब तक हम भजन नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने सुना है कि नायमात्मा बलहीन लभ्य, दुर्बल चित्त कमजोर व्यक्ति जो कि भजन साधन विहीन, ऐसे दुर्बल चित्त व्यक्ति कभी भी भगवान को पा नहीं सकते। जो गुरु की सेवा नहीं करेगा और भगवान का भजन करते रह जाए, लाख बरस ऐसे भजन करते रहेंगे, पड़े रहेंगे, बोले पड़े रहो अभी, तो गुरु की सेवा नहीं करेंगे और भगवान का भजन करेंगे तो कभी भी भगवान की कृपा नहीं होगी। जब तक गुरु तत्व कौन बलदेव प्रभु, तो जब तक चित्त बल नहीं देंगे, हृदय में वो प्रकाशित नहीं होगा, तब तक भगवान का भजन नहीं हो पाता। भजन का मतलब क्या है? सेवा करना। कैसे सेवा करेंगे? जैसे प्रलंबा सुनाया सेवा करने के लिए और सखा बन करके कृष्ण को आनंदित करके खेलने को आए, परंतु वह तो कपटता की मूर्ति बन गई, इसलिए बलदेव प्रभु जी ने उस कपटता को दूर करके दिखा दिया। इसी प्रकार से जितने भी लीलाएं हुई हैं, सभी लीलाओं में कुछ न कुछ शिक्षाएं देते हुए बलदेव प्रभु जी ने गुरु का काम किया। और भी दिखाते हैं जय राम घाट जय रहिणी नंदन, सभी लीलाएं प्राय करके वर्णन हुआ है। जैसे कि बोलते प्रभु जी जब ब्रज में आए, उस समय जब द्वारकापुरी में कृष्ण दिवारात गोपियों के लिए रोया करते हैं, ब्रज में जाने का नाम ही नहीं करते, तब बोलते प्रभु जी बोले भैया तुम तो केवल रोते ही रहते हो, जाने का नाम क्यों नहीं लेते हो। अंततः नारायण होकर के बोले तुम जाना जाओ या नहीं जाना है मत जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। सीता बलदेव प्रभु जी निकल करके आए ब्रजवासियों के प्रेम में, उनको जो आदर्शन है वे कभी नहीं भूले हैं, इसलिए ब्रजवासियों के प्रति सहानुभूति और उनके प्रति जो स्नेह प्रति प्रेम और जो प्रदर्शन किया है, बलदेव प्रभु जी आए और सभी से मिले, सभी प्रेम पूर्वक मिले, सभी रोते हुए अपनी दुख कहानी सुनाने और कृष्ण बलराम के रूप में लिए किस प्रकार विरह में डूबे हुए हैं ये सभी दिखाया। जबकि बलदेव प्रभु जी अब कुछ खाने पीने के पश्चात जब विश्राम करने लगे, ऐसे समय में ब्रज गोपियां आई जो कभी सामने नहीं आती, कृष्ण के विरह में उन्मादित होने के कारण उनका समाचार लेने के लिए जबकि गोपियां आए बैठे, उस समय बलदेव प्रभु जी उठ करके बैठे, गोपियों की वो दशा देख करके बलदेव जी भी आश्चर्यचकित हो गए। तो गोपियों ने पूछा किम कुशलम आस्ते नरेंद्र कन्हा उद्भाय जम किम कुशलम आस्ते, कृष्ण क्या नरेंद्र नाम को व्यवहार करके क्या कुशल पूर्वक रह रहे हैं, आनंद से तो है, कभी उनको कोई कष्ट तो नहीं है, हमारे लिए तो वे भूल ही चुके हैं, अब तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। इस प्रकार कहती हुई एकदम अनुमान में आ गई तो बंदे प्रभु यह समस्त देख करके शहर हो गए और धैर्य को बीच को बैठे। गोपियों की वो दशा देख करके बलदेव जी ब्रज में आ करके कृष्ण के बिना हमें डूब करके श्यामानंद को प्राप्त हो गए, इस प्रकार की स्थिति बनी। जो कि दीनदास बलदेव प्रभु आसन वसन भूषण छत्र पादुका चावर व्यंजन आदि करके सब प्रकार से सेवा करते हैं, स्वयं भगवान हो करके भी सेवा करते हुए आदर्श दिखाया कि कैसे भगवान की सेवा करें। इस प्रकार जो कि स्वयं बलदेव प्रभु जी सेवा का आदर्श दिखाया और गुरु के रूप में समस्त जगत को जीवों को शिक्षाएं दी और सब पर अनुग्रह किया, और इस प्रकार से बलदेव जी जो कि सभी पर अनुग्रह करने वाले अखंड गुरु तत्व के जो मूलभूत विग्रह, आज उन्हीं के चरणों में हम पुष्पांजलि समर्पण करते हैं, वे हम सब पर अनुग्रह करें। इतना कह करके मैं अपना पद को
सभी वक्ताओं ने बहुत सुंदर बलदेव जी के तत्व के संबंध में बतलाया। हम लोग पहले ये सब कथाओं का, बलदेव तत्व का पहले हम लोग विवेचन किया है, जब यहाँ आते थे तब ये सब वर्णन होता था। इन्होंने प्रायः सभी बलदेव जी के विषयों को, पहलुओं को इन्होंने स्पर्श कर दिया है। दो चार मैं कुछ बतलाऊ बोलूंगा। कृष्ण सच्चिदानंद तत्व है। सच्चिदानंद सत ची और आनंद स्वरूप है, किंतु जब इसको पृथक पृथक किया जाएगा तो कृष्ण पूर्ण अखंड चित स्वरूप है और ह्लादिनी शक्ति राधिका जी आनंद स्वरूप और बलदेव प्रभु जी हैं सत, सत माने सत्ता स्वरूप। ये तीन मिलकर के कृष्ण है, किंतु कृष्ण अकेले ही दिखाई देते हैं, किंतु उनमें राधा जी भी हैं और बलदेव जी भी हैं और स्वयं तो वो कृष्ण है। इन तीनों के दोनों के बिना कृष्ण की सत्ता नहीं रह सकती, इसलिए कृष्ण की सत्ता, उनकी बंसी, उनके आसन बसन भूषण जो कुछ है, उनके लीलाओं के जो पृष्ठभूमि है, सब कुछ बलदेव प्रभु जी ही हैं। विशेष करके बलदेव प्रभु जी अभी जो उन्होंने बतलाया, कृष्ण रो तो रहे हैं, बलदेव जी कहते हैं जो चलो वृंदावन में, किंतु फिर भी नहीं आते हैं, इसके भी बहुत से कारण हैं। बलदेव जी सभी उसी समय में आए और जैसा कि इन्होंने वर्णन किया, गोपियों से भी मिले, यही नहीं उनको संतोष देने के लिए, उनका दुख दर्द भुलाने के लिए उन्होंने रास किया। वही दाऊ जी में रास रामघाट पर रास किया। रास किया कोई कोई कहते हैं कि वो बलदेव प्रभु की ही प्रेयसिया थी, उनके साथ में ही उन्होंने रास किया, किंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि अप्राकृत धाम गोलोक वृंदावन में या यहां पर भी भौम वृंदावन में उनकी लीलाएं होती हैं।
कृष्ण की, कृष्ण बलदेव प्रभु जो लीला किया वहां पर सभी प्रकार की गोपियां थी, सभी थी, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं होता। जब स्वर्ग में अस्पराओं के ही संबंध में कोई दोष नहीं होता तो अप्राकृत वृंदावन में क्या दोष हो सकता है। हम लोग समझते हैं कि रास एक गंदी लीला है। रस माने क्या? रस, रस के द्वारा गोपियों को बुलाना चाहते हैं, सांत्वना देना चाहते हैं। रस माने साथ में नित्य करना, गान करना, इसके अतिरिक्त और कुछ मत समझो। बलदेव प्रभु जी ने उनको भुलाने के लिए उनके साथ में नित्य किया। और बलदेव प्रभु जी कैसा संगीत जानते हैं? जैसा कि कृष्ण संगीत जानते हैं। दोनों भाई राधा गोवर्धन में, गोवर्धन में होली के उत्सव पर कृष्ण और बलदेव दोनों ऐसे स्वर से गा रहे हैं जिससे सभी लोग मुग्ध हो गए। और दोनों के सामने ही वहीं पर गोपियां भी थी, इसलिए बलदेव प्रभु जी ने जो रास किया गोपियों को भुलाने के लिए, इसमें कोई भी दोष नहीं है। इसमें समस्त प्रकार की गोपियां भी रह सकती हैं, उसमें भी कोई दोष नहीं है। विशेष करके जब रास कर रहे थे तो जमुना जी को उस पर बुलाया, गोपियों को प्यास लगी होने पर वो नहीं आई, नहीं आई तो हल और मुसल से उनको खींच लिया। जमुना जी भी दो हैं, एक तो समुद्र जिनके पति हैं और दूसरी है विशाखा स्वरूप कृष्ण की सखी। उन्होंने विशाखा जी को नहीं खींचा, उन्होंने जो समुद्र में मिलती हैं जिनके पति समुद्र हैं उनको खींचा। इसलिए इसमें भी दोष नहीं है। विशेष करके और एक चीज दिखलाया, दुविध बंदर को उन्होंने मारा। दुविध रामचंद्र जी का भक्त था और रावण के विरुद्ध में ये इन्होंने युद्ध किया था राम के लिए, किंतु लक्ष्मण जी के प्रति इनकी दुर्भावना थी, निंदा किया करते थे। जब कृष्ण लीला आई राम लीला के बाद में तो ये कृष्ण के प्रति तो इनकी भक्ति थी, किंतु बलदेव जी के प्रति पूर्व जन्म के संस्कार के वजह से ये भी बनी रही दुविध की। और उन्होंने बलदेव जी से अश्लील भावों को दिखलाया, गोपियों के कपड़े नोच डाले, तब बलदेव जी ने मुसल से उसको खींचा, हल से और मुसल से उसे मारा। तात्पर्य क्या है? भगवान का भजन करने पर भी यदि उनके भक्तों की कोई निंदा करता है बलदेव जी नहीं सहन कर सकते। इसलिए भगवान को मानते हैं और बलदेव जी को नहीं मानते हैं, ये अर्ध कुकुटित की भांति है। इसलिए हम लोगों को इसी प्रकार से रहना चाहिए, भगवान का भजन करते हैं किंतु भक्तों के प्रति निंदनीय व्यापार करते हैं, ये ठीक उचित नहीं है। ये एक समय में घूमते 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 नैमिषारण्य में गए और वहां पर कथा हो रही थी, वहां पर लोमहर्षण सूत, वही भागवत की कथा करने बैठे थे और सौनक इत्यादि उनसे भी श्रेष्ठ महापुरुष लोग वहां पर हरि कथा सुन रहे थे। बलदेव जी आए, सभी उठ करके उनका स्वागत किया, किंतु ये दुर्बुद्धि उठा नहीं, मैं भागवत का वक्ता हूं, आचार्य हूं, भला मैं कैसे उठूं। उस समय बलदेव प्रभु जी देखा जी ये तो भाग पाठक नहीं है, ये तो महादाम्भिक है, दाम्भिक व्यक्ति को भागवत का पाठ प्रवचन नहीं करना चाहिए, इसलिए हाथ से ही ऐसे किया और उसका सिर अलग हो गया। अब तो सौनक इत्यादि ऋषि बोले अरे प्रभु आपने ये क्या कर दिया, ये हमको तो हरि कथा सुनाते थे, ओ तो मैं इसको जीवित कर दूं। बोले अब तो जो कुछ हो गया आप ऐसी कोई बात कीजिए कृपा करके कि हम लोगों को ये हरि कथा सुनने के लिए मिले। उन्होंने उसके छोटे बेटे को बैठा दिया और शक्ति संचार करके उसमें अपनी सारी शक्ति लगा दी और तब कहा कि तुम आज से इन लोगों को कथा सुनाना। यही कौन है? उग्र सभासुर। और यही परीक्षित की सभा में ये भी थे और सुखदेव गोस्वामी से इन्होंने भागवत की कथा सुनी। तो यदि कोई दाम्भिक व्यक्ति हो, आचार्य का अभिमान हो और गुरु और वैष्णव श्रेष्ठ लोग आते हैं उसका सम्मान ना करे, तो बलदेव जी ऐसे ही दंड देते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा भाव न हो। इसलिए रूप गोस्वामी ने लिखा है वैष्णव का आचार, उत्तम वैष्णव से कैसा व्यवहार, मध्यम वैष्णव से कैसा व्यवहार, कनिष्ठ से कैसा व्यवहार, ये सबको ठीक रख करके हम लोगों को आगे बढ़ना है। इसी प्रकार से अभी रामचंद्र जी की लीला में बहुत ही सुंदर सरस वर्णन किया लक्ष्मण जी के संबंध में। केवल उसी लीला में ही नहीं, बलदेव प्रभु जी खेती करते हैं। क्या खेती करते हैं? बलदेव के रूप में वृंदावन में है, वहां पर कृष्ण की लीला की उपयोगिता के लिए सारे मुक्ति मुक्त प्राप्त कृष्ण के परिकर जो हैं उनको सबको वही प्रकट करते हैं या परिकर के रूप में वही हैं। और द्वारका में उनका चतुर्व्यूह है, मथुरा में भी चतुर्व्यूह नहीं है, वही द्वारका में है। और वहां पर अनंत कोटि मुक्त जीवों को प्रकट करते हैं जो कि कृष्ण की सेवा करते हैं ऐश्वर्य भाव से, माधुर्य भाव से वृंदावन में कराते हैं और यहां पर ऐश्वर्य भाव से, और फिर वही उन्हीं का प्रकाश वैकुंठ में नारायण के निकट में संकर्षण महासंकर्षण, वो मूल संकर्षण ये महासंकर्षण, महासंकर्षण परब्रह्म में वैकुंठ में राम इत्यादि हैं, नृसिंह देव जी हैं और भगवत तत्व अवतार हैं, वहां पर उनके परिकर के रूप में नित्य मुक्तों को भी प्रकट करते हैं। और कर्णाब्धिशायी विष्णु के यहाँ वही उन्हीं के दृष्टि से सारे बद्ध जीव लोग प्रकटित होते हैं, वहीं से कोई तटस्थ होने पर कोई भगवान की तरफ में देखते हैं वैकुंठ की तरफ में, वो वैकुंठ में चले गए, और जो जिन्होंने माया की तरफ में देखा वो माया की तरफ में आए। इस तरह से बलदेव जी उनको प्रकट किया। और शेष के रूप में एक और रूप है और वो क्या करते हैं, उन्हीं पर शेष कर्णाधिशायी विष्णु बैठते हैं या गर्भोदशायी शयन करते हैं, वो लोग शयन करते हैं और उनकी सब समय सेवा करते हैं। इस प्रकार से इन पांच रूपों में बलदेव प्रभु जी सेवा करते हैं। हल और मुसल बतलाया, खेती तो करते हैं, मुसल किस लिए? पाषंडियों का दमन करने के लिए। इसलिए बलदेव प्रभु जी की आज की आविर्भाव तिथि है। संक्षेप में बहुत सुंदर और सरस रूप में बलदेव जी के तत्वों का वर्णन किया गया। बलदेव जी प्रभु जी हम पर और आप सभी पर कृपा करें जो कृष्ण तत्व में भक्ति में हम लोगों का प्रवेश हो। यही प्रार्थना करके आज का वक्तव्य समाप्त करता हूँ। गौ प्रेमा बलदेव प्रभु जी। अब मैं गोवर्धन में जाऊंगा, कुछ लिखूंगा पढ़ूंगा, तुम भी एक दिन आना।
আজকে চন্দ্রগ্রহণ আছে,
চন্দ্রগ্রহণ
আজকে।